شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سورة فرقان جو قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اس سورہ کی یہ 7ویں آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کفار قریش جو بے بنیاد الزامات لگا رہے تھے انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کبھی قرآن مجید کے تعلق سے الزام اور تہمت اور افترا پردازی خود انہوں نے کی اور یہ کہا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ نبی کریم کی گڑی ہوئی کتاب ہے اور ایک جھوٹ کا مجموعہ ہے یہ الزام لگایا تھا اور اب خود نبی کریم کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے یہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے قالو اور کہتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں وقالو ما لہذا الرسول کہ یہ رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی کاٹتا لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو. یعنی یہ ایک قسم کا نبی کریم کے اوپر ان کا ایک الزام ہے قالوا ما لهذا الرسول کہ اس رسول کو کیا ہو گیا. اگر یہ رسول ہے تو پھر یہ کیسا رسول ہے, کیونکہ انہیں جو جس نبی کے تعلق سے توقع تھی کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ کیسا ہوگا. یا تو پہلے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی بھیجا گیا ہے تو اللہ کو کیا ضروری ہے کہ انسان ہی کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنائے, اصل تو چاہیے تھا کہ وہ ملک کو بھیجے. یا پھر یہ کہ ایسے کو بنائے جو ملک کی طرح ہو, قدرت والا ہو, طاقت والا ہو, گھر بیٹھے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے پاس دستیاب ہو, اس کو نہ بازار جانے کی ضرورت پڑے نہ کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پڑے. یعنی وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اگر عامیانہ ہو اور عوامی طرز کا ہو تو وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول جو عوامی نہیں تو وہ عوامی نہج زندگی اور عوامی طرز زندگی کو رسول کے لیے نقص اور عیب مانتے تھے, کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عام زندگی گزارنا رسولوں کے لیے, وی آئی پیز کے لیے, بڑی شخصیتوں کے لیے, یہ عام لوگوں کی طرح بازار میں جانا یہ عیب ہے, معیوب ہے. جس طرح سے آج بھی جو لوگ اپنے اہم شخصیتیں مانی جاتی ہیں, منسٹر لیول کے جو لوگ ہیں یا جو ہے صدر جمہوریہ ہے یا جو ہے وزیر اعظم ہے یا مملکتی کوئی وزیر ہے یا چھوٹے موٹے کوئی عوامی نیتا وغیرہ ہے, یہ لوگ جو ہیں عام لوگوں کی طرح بازار میں نہیں گھوما کرتے, خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ تھیلی لٹکائے ہوئے بازار میں کبھی آلو خرید رہے ہوں, کبھی ٹماٹر خرید رہے ہوں, یہ بات جو ہے منڈی میں جانا, سبزی منڈی میں نظر آنا یا جو ہے اس قسم کے بازار میں نظر آنا ان کے لیے, یعنی عام انسانوں کی طرح گھومنا, عام انسانوں کی طرح خرید و فروخت کرنا, عام انسانوں کی طرح چہل پہل کرنا, یہ اس کو وہ نبی کے لیے نقص سمجھتے تھے, عیب سمجھتے تھے, معیوب بات سمجھتے تھے کہ یہ رسول, یہ کیسا رسول ہے بولتے تھے, ارے یہ بھی کوئی کسی قسم کا رسول ہے. یعنی یہ جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑا کر مسلمانوں کو کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے تم کس قسم کے آدمی کو رسول مان رہے ہو, یہ بھی کوئی رسول ہے. जो आम लोगों की तरह मिसाल के तौर के ऊपर हंसता बोलता है, आम लोगों की आम इंसानों की तरह नजर आता है, यानी उनके जहन में था कि रसूल यानी आम इंसानों से हटकर एक अलग किस्म की उसकी छवि हो, वो जो है देवताओं की तरह हो या जो है बुतों की तरह हो, मुजस्मा बन के रहे, जो है खुल के ना हंसे ना रोए ना मुस्कुराए। हैं इस जो है फरमानी साहब की बात याद आ रही कि उनके उन्होंने भी इस आयत के हाशिए पे लिखा है, अपने तर्जुमे के हाशिए पर फरमानी साहब ने लिखा है कि रसूल तो रसूल है, आज के ज़माने में वो लोग जिनको रसूल की खाक से भी जो है कोई मतलब मुमासिलत नहीं है, जो नबी की धूल के बराबर भी नहीं है, हमारे जो है मुफक्किरीन, हमारे उलमा, हमारे दानिशमंद जो तो वो लोग भी, उनके ताल्लुक से भी लोगों का ये गुमान है कि वो लोग भी आमियाना और आवाम की तरह ना नज़र आए, ना बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त करते हुए नज़र आए और न ही हंसते बोलते हुए नज़र आए, न खुल के हंसें न खुल के जो है मुस्कुराएं। तो वो जो है हंसने को भी जो है खिलाफ शरा समझते हैं और जो है इस तरह से आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए मायूब समझते हैं, नक्स और आयब समझते हैं। तो न सिर्फ ये कि जो है वो लोग आयब समझते हैं, ख़ुद आम आवाम भी जो है ऐसे को न आलिम मानने के लिए तैयार है न रसूल मानने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि ये किस किस्म का जो है मतलब रसूल है, रसूल कितनी बड़ी बात है, रसूल होना यानी अल्लाह का नुमाइंदा, वो अल्लाह जो खालिक कायनात है, जो मालिक कायनात है, जो मालिक अर्ज़ो समा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है, उसका जो नुमाइंदा है और उससे जिसका रब्त है, उसके पास कितने अख्तियारात होना चाहिए, घर बैठे वो मेवे मंगवा लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो जो है ना ये सारी बातें जो है ना घर से जो है मईशत के लिए निकलना या बाज़ार में नज़र आना, इसके लिए जो है ना ऐब है, ये नक्स है, हम ऐसे को कैसे रसूल मान ले। तो उनके जहन में यह था कि रसूल यानी शाहाना लिबास जेब तन किया हुआ, एक ऐसी जगह पर जो है विराजमान हो कि जो बादशाहों की तरह किसी गद्दी पे बैठा हुआ हो और जो है किसी महल में तशरीफ़ फरमा हो और लोग जो है उसके सामने फर्शी सलाम कर रहे हों और उसके सामने जानो अदब तय कर रहे हों और उसकी बात को जो है वो गौर से सुन रहे हों और एक बड़ी महान शख्सियत का जो है वो तसव्वुर जहन में कि एक बादशाह की तरह हो। कम से कम उनका कहना था कि ठीक है भाई बादशाह ना हो तो कम से कम उसके पास खाने के लिए जो है एक बाग तो होना चाहिए, क्यों जाके जो है वो बाजार से खरीद के लाए, अपना उसका बाग होना चाहिए ना कम से कम। तो अल्लाह के पास जब इतनी बड़ी कायनात है तो अपने रसूल को कम से कम एक बाग ही दे देता। बोलते ना कि जब इतना मिसाल के तौर पे जिनके बाप का इतना बड़ा कारोबार है आप कह रहे हैं तो कम से कम बेटे को एक मुर्गी तो दे देता, एक छोटी सी मोटी दुकान तो दे देता। इसका मतलब ये है कि ये बड़े बाप की औलाद नहीं है, अगर बड़े बाप का बेटा होता तो मार्केट में छोटी मोटी दुकान तो इसकी अपनी होती, इसका जाती कारोबार तो होता। इसका जाती कारोबार ना होने का मतलब यह है कि कोई बड़े घराने का यह फर्द नहीं है, कोई आली घराने की यह शख्सियत नहीं है, बड़े घराने की फर्द नहीं है। ये झूठ कहा जा रहा है कि ये बड़े खानदान का फर्द है, बड़े खानदान से इसका ताल्लुक है, इनके वालिद बहुत अमीर हैं। अगर आप कह रहे हैं बहुत अमीर है तो रहने के लिए मकान तो होना चाहिए, है ना। तिजारत अगर बहुत बड़ी ना हो तो कम से कम एक छोटी दुकान तो होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर ना हो तो हम कैसे मान लें कि ये उस खानदान का फर्द है। इसी तरह से इनका कहना यह था कि अगर ये मालिक कायनात के भेजे हुए नुमाइंदे और रसूल हैं, अगर आपका दावा यह है कि यह रसूल है तो कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए। यानी वो मुसलमानों से कह रहे थे कि तुम लोगों को आखिर क्या हो गया है कि तुम लोग आखिर किस किस्म के आदमी को रसूल मानते फिर रहे हो। तुमको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि ये कैसे रसूल हो सकता है जो माल हाजर रसूल, यानी ये किस किस्म का रसूल है, यानी वकालू कहते थे माल हाजर रसूल, ये किस किस्म का आखिर रसूल है कि याकुल ताम, जो खाना खाता है उसको खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना भाई, वो तो फरिश्ते की तरह होना चाहिए, उसकी तो जो है तस्बीह उसकी गजा होना चाहिए, इबादत उसकी गजा, उसको भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, वो अगर अल्लाह का भेजा। अभी आज भी जो है बस ये यहाँ हैदराबाद के जो अखबारी जहन के लोग हैं या इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि रसूल जो है रसूल और आले रसूल अहले बैत ये जो है इनको जो है आम इंसानों की तरह ये नहीं होते हैं, इनको इज्दिवाज की ज़रूरत नहीं है, ये जो है शादी ब्याह नहीं करते हैं और इनकी शादी जो है मतलब दिखावे की होती हैं, वो जो है सिर्फ घूरते हैं और कुछ जो है ना आम इंसानों की तरह जो है उनका कोई राबिता ही, अगर ये बात हो तो फिर इसका मतलब ये कि उनको भूख भी ना लगे, अगर आम इंसानों को तो भूख भी लगती है, आम इंसान तो प्यास को प्यास भी लगती है, तो फिर हम इस बात का रोना क्यों रोए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्ज कीजिए कि 3 दिन के भूखे प्यासे थे, तो जब अहले बैत को प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, वो हमारी तरह के इंसान नहीं है, तो फिर ये रोना किस बात का है कि वो प्यासे रहें वो भूखे रहें। यानी आज भी कुफार कुरैश का जहन रखने वाले लोग मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं जो रसूल और आले रसूल के बारे में आम इंसानों की तरह उनका उनका होना उनके लिए ऐब मानते हैं, नक्स मानते हैं, कि जबकि जो है आम इंसानों की तरह उनका खाना और पीना ये ऐब नहीं है उनके लिए, रसूलों के लिए ऐब नहीं है, यही यही तो उनके लिए उनका कमाल है कि वो इतने आली रुतबा इख्तियारात के रखने के बावजूद भी उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, ये खुद उनके लिए ये उनकी शान में इजाफा करता है, ये उनकी अजमत में इजाफा करता है, तभी तो वो खल्क़े खुदा के लिए उनकी सीरत और उनकी सुन्नत नमूना करार पाती है। अगर फ़र्ज कीजिए कि भेजा हुआ अल्लाह का नुमाइंदा पैगंबर होता, पैगंबर जो है वो फरिश्ता होता या मलक होता या इंसान मलक की शक्ल में होता या मलक इंसान की शक्ल में होता, जो भी आप तसव्वुर करें कि मलक अगर इंसान के लिबादे में आए या जो है इंसान जो है मलक की तरह हो, तो फिर लोग कहेंगे ये तो मलक है, इसमें तो मलक की खसूसियात पाई जाती है, फिर ये हमारे लिए जो है वो उसकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल कैसे करार पा सकती है, उसकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा कैसे बन सकती है। और फिर अगर उसके अंदर आम इंसान के दुख दर्द को समझने की कैफियत न पैदा हो उसके अंदर, तो फिर वो किस तरह से उनकी रहनुमाई करेगा और किस तरह से उनके दुख दर्द का इलाज करेगा जबकि उस दुख और दर्द को वो महसूस ही ना करता हो। तो यकीनन एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो एक आम इंसान का दर्द भी महसूस करता हो, तभी तो वो उस दर्द का इलाज भी कर सकेगा और लोग उससे मानूस भी हो सकेंगे, वरना एक गरीब और फ़कीर इंसान किस तरह से ऐसे इंसान से मानूस हो जो उनकी तरह का नहीं है, जो उनके रंज और गम को दर्क ना कर सकता हो, जिसकी ज़िंदगी निहायत मुरफ़ा हाल हो, तो उसके और एक आम इंसानी इंसान के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो है फासला हो जाएगा और ये फासला उसको जो है उसके दिल में मोहब्बत ईजाद नहीं कर सकेगा, और वो आम इंसान हमेशा अपने आप को देखकर मायूस होता रहेगा और उसके अंदर कभी भी उम्मीद नहीं जागेगी, ज़िंदगी की चमक उसकी आंखों में कभी आप नहीं देख सकेंगे। क्यों? इसलिए कि जो है वो अपने रसूल को इस तरह से देख रहा है और वो अपने अंदर एहसास से कमतरी पैदा करेगा, लेकिन रसूल ने उन्हें हौसला दिया, रसूल करीम ने गरीबों को हौसला दिया, कमज़ोरों को हौसला दिया, नबी करीम ने कभी भी जो है ان لوگوں کو اہمیت دی جو قوم کے پسماندہ لوگ تھے. جس وقت نبی کریم مدینے میں وارد ہوئے ہیں تو کسی امیر کے مکان میں نہیں ٹھہرے جس کے گھر میں کھانے کے لیے جو ہیں وہ بہترین غذائیں جس کے پاس فراہم ہو سکتی ہوں, جو بہترین مہمان نوازی کر سکتا ہو, ہے نا. ایسے شخص کے پاس نبی کریم نے مہمانی نہیں قبول کی, بلکہ اپنے اونٹ کو جو ہے رہا کر دیا کہ اگر کسی مرفع حال شخص کے پاس میں جاؤں گا تو دوسرا آدمی جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور غریب طبقہ جو بڑی تعداد میں ہیں وہ سب کے سب ناراض ہو جائیں گے, ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. ایک غریب کا دل ٹوٹ جائے گا, ایک جو ہے کمزور انسان کا دل جو ہے رنجیدہ ہوگا, اور وہ کہے گا کہ رسول تو امیروں کے ہیں, وہ تو امیروں کو اہمیت دیتے ہیں, وہ ہم غریب کے یہاں کہاں آئیں گے. تو نبی کریم نے اپنے ناقے کو رہا کر دیا اور کہا جس گھر پر یہ ناقہ بیٹھے گا میں اس گھر میں مہمان بنوں گا, چاہے وہ کسی غریب ہی کا مکان کیوں نہ ہو. یعنی کیونکہ نبی کریم بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی غریب کے پاس یہ ناقہ جا کے بیٹھے, اور یہی ہوا کہ وہ ناقہ ایک ایسے غریب اور فقیر مدینے کے ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھا جسے ابو ایوب انصاری کہا جاتا ہے, کہ جن کے پاس جو ہیں وہ کھانے کے لیے کوئی مرغن غذائیں نہیں تھی, بہت ہی سادہ غذا کھانے والے, بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے. ان کے پاس نبی کریم نے ان کی پاس مہمان بنے اور ان کی میزبانی کو قبول کیا. تو یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو اعتراض آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اس کو پروردگار عالم اس کا جواب دینا چاہتا ہے, اور ایسی ذہنیتوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اس قسم کی جو توقعات ہیں انبیاء کے تعلق سے یہ توقعات غلط ہے. خود انبیاء علیہ السلام نے شاہانہ زندگی کو پسند خود سے نہیں کیا, اگر نبی چاہتے تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن خود نبی کریم فرماتے ہیں الفقر و فخری, فقر میرے لیے, تنگ دستی میرے لیے فخر ہے, میں جو ہے میں اسے اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں, میں ایسی زندگی کو, میں بوریے پہ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں, تخت پر بیٹھنے پر ترجیح دیتا ہوں. یعنی نبی کریم خود اس طرح کی زندگی کو پسند کرتے ہیں, اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک مشترکہ وصف رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جو اس نے اپنے انبیاء کو محروم نہیں کیا ہے, اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جس کو خود انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے وہ نعمتیں نہیں چاہی ہیں. اللہ نے جس نعمت سے محروم نہیں کیا انبیاء کو وہ ہے علم, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے حکمت, ہے نا, کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے علم سے محروم رکھا ہو. چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو, کتنا ہی غریب نبی کیوں نہ ہو, کتنا ہی جو ہے تنگ دست کیوں نہ ہو, یتیم ہو اور جو ہے تنگ دست ہو اور نہایت ہی غریب اور فقیر ہو, لیکن وہ علم سے محروم نہیں رکھا گیا. یہ مشترکہ وصف ہے 124,000 پیغمبروں کا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی نبی کو دولت سے محروم رکھا ہے, اقتدار سے محروم رکھا ہے, منصب سے محروم رکھا ہے, جاہ و حشمت سے محروم رکھا ہے, ہے نا, تخت و تاج سے محروم رکھا ہے, لیکن علم سے کسی کو محروم نہیں کیا. آپ تاریخ نبوت میں یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی ایک نبی کو علم سے محروم رکھا ہو, ادب سے محروم رکھا ہو, اور جو ہے حکمت سے محروم رکھا ہو, ایسا نہیں دیکھا گیا. تو جو نعمتیں اللہ انبیاء کے لیے زیور سمجھتا ہے, اور انبیاء کے لیے جو چیزیں ان کا زیور اور ان کے لیے جو ہے کمال سمجھتا ہے, امتیاز سمجھتا ہے, وہ ظاہری جاہ و حشم نہیں ہے, دنیا داری نہیں ہے, بلکہ انبیاء کا وصف, ان کا امتیاز, ان کی خصوصیت اور ان کا جمال اور ان کی کا کمال یا ان کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ صاحبان علم رہے ہیں, صاحبان فہم رہے ہیں, صاحبان حکمت رہے ہیں. تو اللہ اللہ جس کے اوپر رحم کرتا ہے نا اس کو حکمت عطا کرتا ہے. یعنی اللہ اللہ جو ہے حکمت عطا کرتا ہے. اگر اللہ کسی کے کو جو ہے دولت سے نواز رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے نا تو پھر جو ہے اللہ جو ہے ہم کو دولت سے کیوں محروم رکھا ہے, کیوں ہم کو اقتدار سے محروم رکھا ہے, کیوں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے, یعنی مطلب ہمارے مال میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے, ہماری دولت میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے, ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے, ہمارے اقتدار میں وسعت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے نا, ہماری حکومت میں توسیع کیوں نہیں ہوتی ہے, اگر اللہ ہم کو چاہتا ہے. اور اگر مال ملنے لگے دولت ملنے لگے تو انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے, تبھی تو اللہ ہم کو نواز رہا ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو یہ دولت کیوں عطا کرتا, یہ مال یہ جاہ و حشم یہ دولت کیوں عطا کرتا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا. تو لوگ دولت کی فراوانی کو اللہ کی رضامندی کی دلیل سمجھتے ہیں کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو دولت عطا کرتا ہے. تو یہ کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دولت عطا کرتے ہیں. اگر حکمت عطا کرے تو سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے, کیونکہ اللہ جو ہے علم و حکمت سے جو ہے وہ محروم رکھتا ہے. آپ ایک کافر اور ایک مشرک چاہے جتنا ہی تعلیم حاصل کر لے لیکن اللہ اس کو حکمت نہیں عطا کرتا, اس کو حکمت نہیں عطا کرتا. اسی لیے کہتا ہے کہ علم مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے جو کسی کافر اور مشرک نے چرا لیا ہے, تو یہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے. ہے تو یہ اسی کی چیز, اسی کے پاس اثر دکھائے گا. یعنی علم و حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. وہ علم و حکمت جب مومن کے ہاتھ میں آتا ہے تو اعجاز دکھاتا ہے, معجزہ دکھاتا ہے. علم انبیاء کے ہاتھ میں اعجاز دکھاتا ہے, حکمت انبیاء کے پاس اعجاز دکھاتی ہے. لیکن یہی علم و حکمت, یہی تعلیم, یہی قرآن کا علم اگر جو ہے کسی مشرک اور بے ایمان شخص اگر قرآن کے معلومات حاصل کرے تو قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. یعنی قرآن کا جو اثر ہدایت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے. قرآن انہی قلوب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جو قلوب آمادہ ہوتے ہیں, جو قلوب ایمان سے بہرمند ہوتے ہیں انہی پر یہ علم انہی پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہیں پر جلوہ دکھاتا ہے اور وہیں پر شکوفہ ہوتا ہے, اسی سرزمین پر جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ورنہ شرک کی سرزمین پرانی تعلیمات کے لیے بے اثر ثابت ہوتی ہے, یعنی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے لیے بے فیض ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ یہ نبی نہیں ہے, اگر یہ نبی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ہے نا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے نا, اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے نا. یعنی یہ ذہنیت ہر دور میں پائی گئی ہے اور یہ ذہنیت آج بھی پائی جاتی ہے کہ شخصیتوں کو کمالات و کرامات کے بجائے جو ہے دولت و سرمایہ سے پہچانا جاتا ہے, کہ کس کے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے. جس کے پاس جتنا بڑا سرمایہ ہے اتنا بڑا آدمی ہے, جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اتنا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. یہی بات جو ہے, یہی بات اسی ذہنیت کو جو ہے نا کرت کرتے ہوئے جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے وہ اس بات کو پیش کو کی ذہنیتوں کے خلاف جو ہے مورچہ سنبھالا ہے, کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے پاس اتنا بڑا اقتدار ہے, یزید کے پاس اتنی بڑی حکومت ہے, یقیناً اللہ اس سے راضی ہے. کیونکہ حکومت بادشاہ لوگ یہی کہتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف جب امام خمینی نے جو ہے مورچہ سنبھالا تو انہوں نے محمد رضا پہلوی کہنے لگا کہ بدخواہان بدانن کہ ان حکومت پہلوی از جانب خداوند متعال بما افاظ شدہ است, कि ये बुरा चाहने वाले जान लें कि ये हुकूमत पहलवी अल्लाह सुभानो ताला की जानिब से हमें अता हुई है, जिसको कोई हमसे नहीं छीन सकता है, यानी ये तख्तो ताज अल्लाह का अता करदा है। और ये गरीब देहाती लोग ये समझते थे कि देखो अल्लाह ने इनको अता किया है तो कौन से छीन सकता है, ये बादशाहों को अल्लाह ने जो है हुकूमत अता की है, हम पर जो है इख्तदार अता किया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बल्कि अल्लाह सुबहानहु ताला कहता है कि हम कुछ दिनों तक इन मुजरिमों को, इन फासिखों को दौलत व हुकूमत देते हैं ताकि इन्हें आजमाएं और एक दिन जो है इनको खींचे जहन्नम की तरफ और इनको एक बहुत बड़ी सजा में जो है इनके करतूतों को बदल दें, कि ये जो आज कर रहे हैं इनको जो है हम बड़ी सजा देने वाले, इसलिए हमने इनको छूट दे रखी है, इन्हें हमने इनको छूट दे रखी है, दुनिया में ये जितना कुछ करना चाहे कर लें, बाद में जो है इनके अजाब में इजाफा हो जाए और इस अजाब के इजाफे से जो है वो जहन्नम के निचले तबके में जाएं, इसके लिए अल्लाह ने उनको छूट दे रखी है। तो ये कहते हैं कि ये कैसा रसूल हो सकता है, कि ये रसूल किस किस्म का है जो खाता है पीता है और बाजारों में चक्कर लगाता है, और इसके पास कोई मलक क्यों नहीं नाजिल किया जाता जो इसके साथ मिलकर अजाब इलाही से डराने वाला हो, यानी कोई एक मलक उसकी तायद करने वाला होना चाहिए ना, और हर काम ये खुद क्यों करे, एक मलक को गुलाम बना दिया जाए वो जाकर बाजार से सौदा लेकर आए, क्योंकि ताकि ये मालूम हो कि ये अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, इसकी खिदमत के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्ते नाजिल करता है इसकी खिदमत के लिए, हम ये देख लें और देखने के बाद ईमान ले आए कि भाई ये रसूल है, और ये अगर रसूल ना होता तो अल्लाह जो है मलक को इसका गुलाम बनाकर क्यों भेजता, ना कोई मलक इसके साथ नजर आता है, ये अकेला जो है बाजार में घूम रहा है, तो हम इस शख्स को कैसे रसूल मान ले, ये किसी भी शक्ल में रसूल नजर ना लिबास से रसूल नजर आ रहा है, ना चलने फिरने से कोई रसूल नजर आ रहा है, ना बातचीत से कोई रसूल नजर आ रहा है, ना इसका उठना बैठना ऐसा है कि जिसके जरिए से कोई जो है एक अलग इम्तियाजी कोई खसूसियत जो है जो ये ढूंढना चाह रहे थे वो इम्तियाजी खसूसियत नजर नहीं आती। रसूल बैठते हैं तो गुलामों की बैठक बैठते हैं, यानी जो है एक आम इंसानों की तरह बैठते हैं, वो उठते हैं तो आम इंसानों की तरह, उनका लिबास आम इंसानों की तरह, उनका चलना फिरना आम इंसानों की तरह, और जो है उनका बाजार में जाना खाना पीना बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है, जिससे हम ये कैसे समझ लें कि जो है ना ये रसूल हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जो बातिनी कैफियत का इदराक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ईमान की वो कैफियत नहीं पैदा हुई थी कि वो किसी के इल्म को देख सकें, किसी के जो है हिकमत को देख सकें, किसी के कमालात रूहानी और मकामात मानवी का इदराक कर सकें, वो सलाहियत तो उनके पास थी नहीं, तो लिहाजा वो जाहिरी चीज़ें देख रहे थे। एक और इल्ज़ाम यहीं पर वो लगाते हैं और एक और एतराज़ करते हैं, एक और मसला जो है मुसलमानों के सामने रखते हैं कि आखिर तुमको क्या हो गया है कि तुम ऐसे आदमी को रसूल मान रहे हो, इसमें तो हम कोई खसूसियत नहीं देख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि या उसकी तरफ कोई खजाना ही गिरा दिया जाता, ये एक और एक इल्जाम है, और युल्का इलैही कंज़ुन, यानी उसके ऊपर कोई खजाना गिरा दिया जाता, वतकून लहू जन्नतुन या अकुल मिन्हा, या उसके लिए कोई बाग होता जिससे वो कुछ खाता पीता, यानी अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन है, अगर ये अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है तो इसके पास कम से कम अपना एक जाती बाग तो होना चाहिए ना, कि जिसमें जो है अनवा अकसाम के मेवे लगें और ये कम से कम जो है वो मेवे वगैरह खाए। यहाँ पर हजरत अली अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं कि वो जो किसी रसूल को जो है बाग से नवाजें, है ना, अगर बाग और इस तरह का सरमाया अगर वो अनबिया को देता तो फिर ये इंसानों के लिए इम्तिहान की बात ना होती, बल्कि वो नबी के बाग और उनके सरमाए से मुतासिर हो के रसूल के अतराफ में जमा हो जाते कि नबी के बाग से कुछ खाने को मिलता, है ना, भूख प्यास मिटती कि नबी के साथ के पास लोग जमा हो जाते हैं उनके बाग की वजह से, है ना। क्योंकि उस जमाने में बाग का होना एक बहुत बड़ा सरमाया माना जाता, साहेब जायदाद, साहेब बाग, यानी वो आदमी फकीर नहीं होता है, उसके पास जो है साल भर का जो है आजुका होता है, कि जिसके पास बाग है वो खुद खाने के लिए उसके पास साल भर का आजुका है, और वो अपने बाग के सरमाए से दूसरों को भी खिला सकता है, क्योंकि पूरा एक बाग जो है इंसान के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें कई जिंदगियां पल सकती हैं, है ना। तो कुछ लोग बाग को देख के मुतासर होते और नबी के सरमाए से मुतासर होके उनके पास आते, तो फिर ये जो है इम्तिहान कहाँ होता है। लिहाजा अल्लाह सुभान व तआला ने अनबिया को बड़े बड़े महल और जो है बड़ा सरमाया और ऐसा माल दुनिया कि जहाँ पर जो है वो खाना भी खाता है, और जो है मिसाल के तौर पर उसके पास इतना बड़ा सरमाया है ना। ये जो है अनबिया को अल्लाह सुभान व तआला ने दुनियावी सरमाया नहीं दिया, लेकिन किसी भी नबी को अल्लाह सुभान व तआला ने, और ये लोग उस सरमाए को देख नहीं सकते थे जो सरमाया अल्लाह ने इनको दिया है, वो क्या था? हिकमत का सरमाया, वो इल्म का सरमाया, वो कमालात का सरमाया। अगर वो रसूल बाजारों और इज्तिमा से अलग हो जाए तो वो पैगाम इलाही कहां और किस तरह पहुंचाएगा, और बशरियत की इस्लाह कैसे कर सकेगा। अगर वो जो है वो अपने दीवान खाने में बैठा रहे और ये इस इंतजार में रहे कि लोग खुद आए ईमान के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, तो जो है मैं उसे मुसलमान बनाऊंगा, और अगर कोई ना आए मुसलमान बनने के लिए तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं तो दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, ग्राहक आए तो आए, ना आए तो ना आए। लेकिन नबी करीम की ये शान थी, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी करीम की ये शान थी कि तबीबुन दवारुन बितिब्बे, लोग जो है डिस्पेंसरी खोल के डॉक्टर बैठ जाता है, या जो है डॉक्टर से मिलना है तो आपको जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन नबी करीम एक ऐसे डॉक्टर और तबीब थे कि तबीबुन दवारुन बितिब्बिही, कि जो अपने तबाबत का सामान लिए लिए फिरते हैं। क्यों? इसलिए कि बेचारे मरीजों को भी इस बात का एहसास नहीं है कि हम मरीज हैं, बीमारों को भी इस बात का पता नहीं है कि हम बीमार हैं। तो नबी करीम जो है बाजारों में घूमते थे और जो है खाना नशीन नहीं रहते थे, बल्कि जो है वो खुद बाजार में, खुद गलियों कूचों में और खुद लोगों के घरों पर दस्तक देते थे, और इस तरह से तबलीग किया करते थे, दावत दीन दिया करते थे। ये जो है नबियों की जिंदगी हमारे लिए और तमाम कलमा गोयान रसूल के लिए एक बहुत बड़ी तालीम है और एक बहुत बड़ी तरबियत है कि नबी करीम रसूल होते हुए तो हमारे जहनों में भी ये बात होनी चाहिए कि हम इल्म देखें, कमालात देखें, न ये कि जो है हमारी नज़र जो है वो दौलत, सरमाया या बाग और मिल्कियत पर ना हो, बड़े बड़े महल पर हमारी नज़र ना हो, अच्छे लिबास पर हमारी नज़र ना हो, बल्कि हमारी नज़र जो है वो उस मानवियत की तरफ हो कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह से करीब हो सकते हैं। अनबिया के पास वो सरमाया होना ज़रूरी है जो वो अल्लाह से करीब कर सके बंदों को, न ये कि वो नऊज़ुबिल्लाह खुद बुत बन जाएं और लोग उनके सामने सजदा करें, बल्कि वो आयत बनकर अल्लाह की तरफ ले जाने वाले बने, न कि अपनी ज़ात की तरफ लोगों को, कोई ऐसा काम ना करें कि लोग उनकी ज़ात से मुतासर हो के उनको सजदा करें, बल्कि जो है उनकी ज़ात से मुतासर हो के लोग अल्लाह से करीब हों और उनको सिर्फ वास्ता बनाएं अल्लाह से करीब होने के लिए। तो ये एक और उनका इल्ज़ाम था, कहते थे औ युल्का इलैहि कंज़ुन, या तो एक खजाना ही उन पर गिरा दिया जाता, या फिर ये के औ कंजुन व तकून लहू जन्नतुन, या उनके लिए एक बाग होता, जन्नत जो है वो बाग को कहते हैं, जन्नत बाग को कहते हैं, या कुल मिन्हा, जिस बाग से वो खाता पीता। व काल वालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, तो ये लोग ये कहते थे, ये जालिम कहते हैं, कि तुम लोग एक जादू जदा आदमी का इत्तबा कर रहे हो, एक साहिर का इत्तबा कर रहे हो जो तुमको बेवकूफ बनाया हुआ है, जो तुमको जो है अपने जादू से जो है तुमको मुतासिर किया। कहते नहीं पता नहीं क्या पढ़ के तुम पे फूंक दिया है कि जो तुम उसके गर्विदा, ना उसके अंदर कोई शान है, ना उसका कोई लिबास ऐसा है, ना उसका कोई मकान ऐसा है, ना उसके उसका उसके पास जो है कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसको रसूल माना जाए। फिर तुम क्यों ऐसे शख्स के पीछे जो है वो उसका कलमा पढ़ रहे हो? आखिर क्या खूबी है बताओ उसके अंदर? अगर वो अल्लाह का पसंदीदा होता तो अल्लाह उसके पास जो है कम से कम जो है कुछ खजाना ही फेंक देता कि जिसके जरिए से वो साहिब खजाना बन जाता। अगर अल्लाह उससे राजी होता तो खजाना फेंक देता, या यह है कि उसको जीने के लिए कम से कम एक बाग दे देता अल्लाह, वो भी नहीं है। फिर क्यों जो है तुम ऐसे शख्स को मानते हो? तो ये जालिम कहते थे कि वकाल अवालिमून, ये जालिमीन कहते थे इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलम मसूरा, बस ये है कि तुम लोग एक ऐसे इंसान की इत्तबा कर रहे हो जो जादू ज़दा आदमी का इत्तबा कर रहे हो, तुम लोग मसहूर का जिसको जादू हो चुका है उसका इत्तबा कर रहे हो। बस आखिरी आयत ये कि आज के लिए कि उन्दुर कैफ ज़रबु लकल अम्थाला फ़ज़ल्लु फ़ला यस्ततीउन सबीला। उन्दुर, देखो, गौर करो, यानी जालिमों की बातों को आंख बंद करके मत मान लो, बल्कि जो है दिक्कत नजर से काम लो। दीन के मसले में दिक्कत नजर से काम लेने की जरूरत है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो खाने पीने के ऊपर इतनी एहतियात करते हैं कि उसको सूंघते हैं, उसको देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उसके बाद खाते हैं। कोई चीज उठा के जो है नहीं खा लेते जब तक के जो है उस चीज को अच्छी तरह से न देख लें कि इसकी कहीं मुद्दत खत्म तो नहीं हो गई है, ये हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है, उतर तो नहीं गई है, गजा बासी तो नहीं हो गई है। कई जाविये से उसको देखते हैं। लेकिन जालिमों की बातों को, कुफार की बातों को, मुशरिकीन की बातों को बगैर सोचे समझे कि प्रोपेगेंडे का शिकार, अच्छे अच्छे लोग प्रोपेगेंडे का शिकार बन जाते हैं। तो कुरान मजीद कह रहा है उन्जुर, कभी थोड़ा सा गौर करो, उन्जुर कैफ ज़रबु लकल अम्फाल, गौर करो, देखो इन लोगों ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी मिसालें बयान की हैं। मिसालें यानी ये लोग मिसाल का, यहां पर मिसाल का मतलब मिसालें नहीं थी, बल्कि ये गुमराही के पलंदे या एतराजात या इल्जामात, तोहमतें। यहां अम्साल से मुराद इनकी तोहमतें। उन्दुर कैफ ज़रबु लकल अम्साल, के तुम्हारे लिए इन लोगों ने कैसी कैसी मिसालें बयान की है, यानी जो है खजाना गिर जाता, बाग होता, या जो है उसको ऐसा रसूल होना चाहिए था जिसको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना खाना खाए, ना पानी पिए, है ना, फरिश्ते की तरह होना चाहिए था। ये कैसा किस्म का रसूल है? तो ये किस किस्म की मिसालें बयान की हैं? ये तो बिल्कुल गुमराह हो गए हैं और अब रास्ता ही नहीं पा सकते कि फजल्लु फला यस्ततीउना सबीला, कि अब ये गुमराह हो गए हैं और इन्हें रास्ता नहीं मिल सकता है। ये कुरान मजीद ने गोया सारे इंसानों के लिए एक हिदायत का एक रास्ता बयान किया है कि झूठे प्रोपेगेंडों का शिकार मत हो और ऐसी मिसालों के को जो है मत मान लो कि जो काबिले कबूल नहीं है, जो तोहमतें हैं, इल्जामात हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।